दिन भर तारीख 10 मार्च दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। 5 साल बाद आया मारुति हिंसा का फैसला, 31 दोषी लेकिन 117 हुए बरी।
हमारा भी खुद न्यायपालिका पे जो विश्वास था वो बिल्कुल आज टूट गया है। जो डिसीजन आया है बिल्कुल मजदूर वर्ग को दबाने के लिए, मजदूर वर्ग का शोषण करने के लिए।
कोलकाता हाई कोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया वारंट। विवेचना में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के उस विवाह की कहानी जिसने भारत को हिला दिया।
जिन्ना कहा कि हम तुम्हारा बेटी से शादी करना चाह रहे हैं, तो उससे वो तो गुस्सा से पागल हो गया था और उसने मना कर दिया कि ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हाउ कैन यू मैरी हर।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। हरियाणा की एक अदालत ने साल 2012 में मानेसर के मारुति प्लांट में हुई हिंसा के मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया है। इस मामले में सजा का ऐलान 17 मार्च को होगा। अदालत ने 117 अभियुक्तों को बरी कर दिया है। साल 2012 में मारुति के मानेसर स्थित प्लांट में हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और करीब 100 लोग घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक तुर्की ने कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ अभियान के दौरान मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन किया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कई शहरों को सुनियोजित तरीके से बमबारी करके तबाह कर दिया गया। रिपोर्ट में टॉर्चर और गैरकानूनी हत्याओं को भी दर्ज किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जुलाई 2015 से 18 महीने के दौरान करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए, इनमें से ज्यादातर कुर्द थे। इस दौरान करीब 2000 लोगों की मौत हुई, जिनमें तुर्की के सुरक्षा बलों के 800 जवान शामिल हैं। तुर्की सरकार ने रिपोर्ट में किए गए दावों को चुनौती दी है। दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति पार्क गुन-हे को हटाने के अदालत के फैसले के बाद राजधानी सियोल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। इनमें से कुछ लोगों ने उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। संवैधानिक कोर्ट ने उनके खिलाफ महाभियोग चलाने के संसद के फैसले को बरकरार रखा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उन्होंने कानून और संविधान का उल्लंघन करते हुए देश के लोगों का भरोसा तोड़ा है। पार्क गुन-हे ने राष्ट्रपति को मिलने वाले विशेषाधिकार गंवा दिए हैं और अब उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ह्वांग क्यूआन ने पार्क के समर्थकों से अदालत का फैसला मंजूर करने को कहा है। उन्होंने कहा,
उरी मोदुगा हंपोप जेपानसोए गेलजेंगेल जोंजुंगहेया।
हमें संवैधानिक अदालत के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अब भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें ये फैसला मंजूर करने में दिक्कत हो। हालांकि ये वो वक्त है जबकि इस फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए और अब तक जो गतिरोध रहा है उसे खत्म किया जाना चाहिए। ये थे दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जापान ने कहा है कि वो मई के आखिर तक संयुक्त राष्ट्र के दक्षिणी सूडान में जारी शांति मिशन से अलग हो जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री शिंजो आबे का विदेशों में सैन्य भूमिका बढ़ाने का विवादास्पद अध्याय भी बंद हो जाएगा। दक्षिणी सूडान में जापान का 350 लोगों का सैन्य दल है जिसका मुख्य काम देश में आधारभूत ढांचा तैयार करना है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी करीब 2 महीने तक लंदन में रहने के बाद देश लौट आए हैं। वो मेडिकल लीव पर थे। उनके स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। उनकी तबीयत को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं है। राजधानी अबुजा में लौटने के बाद बुहारी ने कहा,
I am deeply grateful to all Nigerians, Muslims and Christians alike who have prayed and
मैं नाइजीरिया के लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और अब भी कर रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि मुश्किल दौर में भी नाइजीरिया के लोग चुनौतियों का मुकाबला करने की सरकार की कोशिशों का समर्थन करते हैं। मेरे लिए आपके एहसानों को उतारने का सबसे उम्दा तरीका ये है कि मैं खुद को आपकी सेवा में लगा दूं, आपके हितों को सुरक्षित रखूं और आपका भरोसा बहाल रखूं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। ये थे नाइजीरिया के राष्ट्रपति के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की संसद ने देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की शादियों से जुड़े विधेयक को पारित कर दिया है। पहली बार हिंदू शादियों के पंजीकरण को कानून में जगह दी गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे हिंदू महिलाओं को प्रमाण पत्र के जरिए सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन करना आसान होगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि समाचारों में अभी अभी आपने वात्सल्य राय से सुना, 5 साल बाद आए फैसले में हरियाणा की गुरुग्राम अदालत ने 2012 में मारुति कार फैक्ट्री में हुई हिंसा के मामले में 31 लोगों को दोषी पाया है, जबकि 117 लोगों को बरी कर दिया है। इस मामले में 147 लोगों के खिलाफ मुकदमा चला था। दोषी पाए गए लोगों को 17 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। इस हिंसा में मारुति के एक मैनेजर की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने क्या कुछ कहा, सुनिए जुबैर अहमद की इस रिपोर्ट में।
आज गुड़गांव की अदालत के अंदर और इसके आसपास कड़ी सुरक्षा का इंतजाम था और प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी थी। आज के फैसले का कार बनाने वाली कंपनी मारुति और मजदूर दोनों पक्ष को इंतजार था। मारुति के एक अधिकारी ने कहा कि कंपनी आज के अदालत के फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, लेकिन मजदूरों ने कहा उन्हें इस फैसले से मायूसी हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। कर्मचारी संघ के एक अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बीबीसी को अदालत के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा,
हम मतलब यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लोग हमारा भी खुद न्यायपालिका पे जो विश्वास था वो बिल्कुल आज टूट गया है। जो एक डिसीजन आया है बिल्कुल मजदूरों के मतलब मजदूर वर्ग एक वर्ग के हिसाब से ये फैसला सुनाया गया है। मजदूर वर्ग को दबाने के लिए, मजदूर वर्ग का शोषण करने के लिए ये फैसला जो है ये अदालत ने आज सुनाया है और हमें बहुत दुख होता है।
जितेंद्र कुमार के अनुसार मजदूरों का संघर्ष जारी रहेगा और ये आंदोलन में भी बदल सकता है।
देखिए सर, ऐसा है जो लीगल प्रोसेस है वो तो हमें आगे तक बिल्कुल चलाना ही पड़ेगा। हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि हमें अभी भी कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि क्या पता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी कोई आवाज सुनेगा और हमारे जो साथी हैं जिनको कि गलत तरीके से बिल्कुल एक स्वार्थ के हिसाब से, एक मतलब पनिशमेंट के हिसाब से, एक उदाहरण के हिसाब से ये सजा दी गई है, तो इसको लेकर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो जाएंगे। साथ में हम यहाँ पे जो पूरी जो मजदूर जो बेल्ट है इसके अंदर में हम इसके खिलाफ में प्रचार करेंगे। और आज जैसा कि आज सभी यूनियनें यहाँ पे आई हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ में हैं और जैसा भी सारे मजदूर मिलके कोई डिसीजन लेंगे तो वो पूरा मतलब स्ट्रगल चलेगा। अभी यहाँ पे हम
आंदोलन भी कर सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल आंदोलन चलेगा ये। अभी
18 जुलाई 2012 को मारुति के मानेसर प्लांट में वेतन को बढ़ाने के मसले को लेकर मजदूरों का विरोध प्रदर्शन हुआ और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। प्लांट में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा उस समय के एचआर मैनेजर अविनाश कुमार देव की हत्या कर दी गई। इस हिंसा में कई लोग घायल भी हुए। दोषी पाए गए 31 लोगों में से 13 को हत्या का दोषी पाया गया है। अदालत अब 17 मार्च को दोषियों को सजा सुनाएगी। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
तो अदालत 17 मार्च को फैसला सुनाएगी, दोषियों को सजा कितनी होगी इसका इस बारे में फैसला सुनाएगी। हमारे साथ कार्यक्रम में दिव्या आर्य शामिल हैं। दिव्या, आपने 5 साल पहले इस मामले को कवर किया, सवाल ये है कि ये मामला क्यों महत्वपूर्ण है? ये तो सिर्फ एक हड़ताल का मामला था
मोहनलाल जी, ये एक बहुत ही अहम हड़ताल मानी गई थी। 2011 में हड़ताल शुरू हुई थी, 2012 में हिंसा का वाक्या था जिससे ये केस जुड़ा है। लेकिन मैं उससे पहले की बात बताना चाहूंगी, 2009 में ये एक पूरा बेल्ट है गुड़गांव मानेसर में जहाँ बहुत सारी गाड़ियों की फैक्ट्रियाँ हैं, तो एक रिको कंपनी की फैक्ट्री है, वहाँ पे एक बड़ी हड़ताल हुई थी लेकिन वो नाकाम हो गई थी, जिसके बाद जो मजदूर यूनियन है वहाँ पे वो सब बहुत कमजोर पड़ गई थी। लेकिन 2011 में जब मारुति के मानेसर प्लांट में हड़ताल हुई और वो हड़ताल थी यूनियन बनाने की मांग के साथ, और जो स्थायी कर्मचारी हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं उनके एक ही हक उन्हें मिले, इसको लेकर वो हड़ताल थी। वो हड़ताल बहुत लंबी चली, वो बहुत मजबूत हड़ताल बनी और प्लांट के अंदर ही एक महीने तक हड़ताल चली, ये इतनी मजबूत हड़ताल थी। तो इसने वहाँ का जो मजदूर संघ था, पूरे ऑटो पार्ट्स की जो फैक्ट्रियाँ थी वहाँ पर, उसे बहुत स्ट्रांग किया था। लेकिन जुलाई 2012 में जब हिंसक झड़प हुई, वहाँ पर एक मैनेजर की मौत हुई, तो करीब 148 लोग गिरफ्तार हुए और 2300 लोग बर्खास्त हो गए।
जी, 5 साल के दौरान मारुति के साथ कर्मचारियों के लिए क्या क्या बदल गया?
देखिए, उसके बाद ये पूरा जो मजदूर संघ था वो टूट गया और स्थायी कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के खिलाफ एक तरह से खड़ा कर दिया गया। जो स्थायी कर्मचारी थे उनके तनख्वाहें बढ़ा दी गई और उनका जो नंबर था वो बहुत कम कर दिया गया। इस वक्त मारुति में सिर्फ 20% जो कर्मचारी हैं वो स्थायी हैं और बाकी जितने कर्मचारी हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट हैं या टेम्प्ररी हैं। तो उससे एक मजदूर एकता टूटी और दोनों के समान हकों की जो मांग थी वो आगे कभी नहीं बढ़ पाई।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिव्या आर्य कार्यक्रम में सीधे इस मामले की जानकारी देने के लिए।
दिन भर शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5885, 7600, 9740, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर। देश के कानूनी इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी हाईकोर्ट जज के खिलाफ वारंट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के जज सी कर्णन के खिलाफ वारंट जारी किया। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को ये वारंट सौंपा और 31 मार्च को उन्हें अदालत में हाजिर होने के लिए कहा। क्या कुछ कहा, पूरी जानकारी के साथ है कोलकाता से अमिताभ भट्टाशाली।
चीफ जस्टिस जे एस खेहर के नेतृत्वाधीन 7 सदस्यीय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने आज जस्टिस सी एस कर्णन के खिलाफ वारंट इशू करने का फैसला लिए हैं। ये वारंट बेलेबल है और 10,000 रुपया जमानत भरना पड़ेगा इसके लिए जस्टिस कर्णन को। पश्चिम बंगाल की पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया गया कि वो इस वारंट को जस्टिस कर्णन के हाथ में दें। 31 मार्च को जस्टिस कर्णन को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। भले ही जस्टिस कर्णन अब कोलकाता हाई कोर्ट में है, पर उनसे न्यायिक और प्रशासनिक सारे जिम्मेदारी ले लिया गया। जस्टिस कर्णन जब मद्रास हाई कोर्ट में थे, उस वक्त की एक घटना में सर्वोच्च न्यायालय ने ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुओ मोटो चालू किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, कई हाई कोर्टों के जजेस के पास एक पत्र लिखकर कई सिटिंग और रिटायर्ड जजों के खिलाफ करप्शन के आरोप लगाए हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चालू किया और दो बार उनको सुनवाई में हाजिर होने को कहा, जस्टिस कर्णन ने उपस्थित तो हुए ही नहीं। ऊपर से 13 फरवरी को एक जवाबी पत्र में यह आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ सीनियर मोस्ट जज उनके विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जस्टिस कर्णन पिछड़े वर्ग से है।
कोलकाता हाईकोर्ट के जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानकारी दे रहे थे अमिताभ भट्टाशाली। चीन के शंघाई शहर में एक भारतीय महिला लीना जरियाल पर एक चीनी व्यक्ति ने हमला किया। मूलतः केरल की निवासी लीना जरियाल अपने पति सुनील जरियाल और दो बच्चों के साथ लगभग एक दशक से चीन में रह रहे हैं। कल शाम एक चीनी व्यक्ति ने उन पर हमला किया। घायल होने के बाद वो खुद ही चलकर अस्पताल पहुंची। पुलिस ने इस मामले के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। लीना जरियाल की हालत बेहतर है। मैंने लीना जरियाल के पति सुनील जरियाल से इस घटना की और जानकारी मांगी।
ये इंस्टेंस जो है ये कल शाम का है, लगभग 5 बजे की बात है। ये शांघाई में यहाँ पे एक एरिया है जिसको होंगचाओ बोला जाता है। यहाँ पे हम 10 साल से यहाँ पे हैं, तो हमने कभी ऐसा कभी ख्याल में भी नहीं आता है कि मतलब किस तरह कुछ वायलेंस होगा या होगा। तो कल शाम को लीना जो है मेरी वाइफ वो हॉस्पिटल जा रही थी, उनका अपॉइंटमेंट था। तो वो ट्रैफिक सिग्नल जो था वहाँ पे एक बहुत ही बिजी एरिया है, तो वहाँ पे वो वेट कर रही थी कि कब वो ग्रीन लाइट होए तो वो क्रॉस करे। तो इसमें मैं एक जो है चीनी इंसान जो है वो हाथ में एक उसके हाथ में डंडा टाइप का था कुछ था, और अचानक से आके उसने वो रेज अटैक की तरह उससे मारना शुरू कर दिया। ये जो है ये अनप्रोवोक था। ट्रैफिक ड्यूटी पे जो वहाँ ये सरकारी कर्मचारी जो था वो भी वहाँ पे था, तो लीना ने उसको चाइनीज में समझाया, बोला कि मुझे मदद करो और पुलिस को बुलाओ। तो उसने भी मना कर दिया कि बोला कि आप ऐसा 110 हेल्पलाइन पे डायल करिए। वो निराशाजनक जो बात जो है ये है कि जो वहाँ पे बाकी आम जनता जो थी कोई भी हेल्प करने के लिए कुछ नहीं आया, और ना किसी ने कोई एम्बुलेंस मंगवाई ना कोई टैक्सी करते भी कुछ ने। तो वो उसी ब्लीडिंग की हालत में वो वैसे ही वॉक करते हुए वो हॉस्पिटल पहुंची है।
क्या ये हेट क्राइम का कुछ मसला हो सकता है?
देखिए इस बारे में इतना जल्दी कहना बहुत मुश्किल है मुझे भी।
ये बताइए कि हाँ। क्या इसके बाद आपने पुलिस के पास पहुंचने की कोशिश की और पुलिस ने इस मामले में क्या किया है अब तक?
हम हॉस्पिटल पहुंचे तो जो हालत थी तो वो ट्रीटमेंट चल रहा था, और मैंने जो वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर को मैंने सबसे पहले ये बोला कि आप इमीडिएटली पुलिस को बुलाइए, और हमने पुलिस को बुलवाया और पुलिस वहाँ पे आई। तो उन्होंने जो हमें बताया कि वो बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है मेंटली अनस्टेबल है, इसको 26 दिसंबर 2016 को इसको रिलीज किया गया है वहाँ से।
पुलिस ने इस शख्स को अरेस्ट किया है?
हाँ जी अरेस्ट किया है। वो उन्होंने हमें दिखाया कि हमने इस शख्स को अरेस्ट किया है और ये वो शख्स है, और इसको जो है हम इसको अभी नेक्स्ट जो है इसको मेंटल हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं ताकि इसका मेंटल इवैल्यूएशन हो सके कि ये व्यक्ति वाकई मेंटल है।
ये थे लीना के पति सुनील जरियाल, और लीना की हालत बेहतर है, फिलहाल वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं। और अब कार्यक्रम में वक्त है विवेचना का। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 साल की उम्र में अपने से 24 साल छोटी रति दिनशा से विवाह किया था। रति की गिनती अपने ज़माने की सबसे हसीन लड़कियों में होती थी, और वो जिन्ना के नज़दीकी दोस्त सर दिनशा पेटिट की बेटी थी। हाल ही में शीला रेड्डी की एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना, द मैरिज दैट शुक इंडिया। इस किताब में जिना को उनकी शादी के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की गई है। जिना और रति की इस अनूठी प्रेम कहानी पर नजर दौड़ा रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
जब चाहे मजबूर करे मौत और इश्क के आगे लोग कोई चले न बहाना जी इश्क की मार बड़ी दर्दी।
जब नाश्ते की मेज पर मुंबई के बड़े रईसों में से एक सर दिनशॉ पेटिट ने अपने प्रिय अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल का आठवां पन्ना खोला तो एक खबर पर नजर पड़ते ही अखबार उनके हाथों से नीचे गिर गया। तारीख थी 20 अप्रैल 1918 और खबर थी पिछली शाम मोहम्मद अली जिना ने सर दिनशॉ की बेटी लेडी रति से शादी कर ली। कहानी शुरू हुई थी 2 साल पहले जब सर दिनशॉ ने अपने दोस्त और वकील मोहम्मद अली जिना को दार्जिलिंग आने की दावत दी। वहां पर दिनशॉ की 16 साल की बेटी रति भी मौजूद थी जिनका शुमार उस जमाने में मुंबई की सबसे हसीन लड़कियों में हुआ करता था। जिना उन दिनों भारतीय राजनीति के शिखर को छूने के बिल्कुल करीब थे। हालांकि उस समय उनकी उम्र 40 की थी लेकिन दार्जिलिंग की बर्फ से ढकी खामोश चोटियों और रति के बला के हुस्न ने ऐसा समा बांधा कि रति और जिना एक दूसरे के प्रेम पाश में गिरफ्तार हो गए। उन्होंने उसी यात्रा के दौरान सर दिनशॉ पेटिट से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। मिस्टर एंड मिसेस जिना द मैरिज दैट शुक इंडिया की लेखिका शीला रेड्डी बताती हैं।
कहा जाता है कि जिन्ना सर दिनशॉ के पास जाके कहा कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ इंटर कम्युनल मैरिजेस, तो उसने बिना सोच के उसने कहा बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि इससे इंडियन कम्युनिटीज़ विल गेट मोर यूनाइटेड। तो फिर जिन्ना उसका एक्सप्रेशन बिना बदल के उसने कहा तो अच्छा है क्योंकि हम तुम्हारा बेटी से शादी करना चाह रहे हैं। तो उससे वो तो गुस्सा से पागल हो गया था और उसने मना कर दिया कि ये व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, हाउ कैन यू मैरी हर। उसने ये नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो और हमारा बेटी पारसी है क्योंकि उस ज़माने के एंग्लिसाइज्ड एलिट में दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकली करेक्ट थिंग टू से, बट उसने ये चीज़ को बार बार दोहराया कि हमारा बेटी तुमसे 24 साल कम है।
दिनशॉ ने अदालत से आदेश ले लिया कि जिना तब तक रति से नहीं मिल सकते जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती। रति जिना पर किताब लिखने वाले ख्वाजा रजी हैदर कहते हैं,
जिनका बेटी ने इस वाकई दार्जिलिंग के वाकई के बाद एक इससे ऑर्डर ले लिया था कोर्ट से कि मेरी बेटी जो है वो नाबालिग है और ये अभी 18 साल की उम्र को नहीं पहुंची है, इसलिए इसके मिलने जुलने पर इनसे पाबंदी लगा दी जाए। तो जिना जो थे उसके बाद सर जिनशा पेटिट के घर पे उन्होंने कोई विजिट नहीं किया और रति जो थी वो अपने घर में एक तरह से मुकैद हो गई। लेकिन जब रति 20 फरवरी 1918 को 18 साल की हुई तो उसने शायद कोई मैसेज भेजा था एक अब्दुल्ला बरेलवी थे जो बम्बई क्रॉनिकल के एडिटर होते थे उनके जरिए से जिना को, तो जिना ने उन्हीं के जरिए से रति को ये पैगाम भेजा कि नहीं आपको अपना घर छोड़ने की इजाजत नहीं है क्योंकि आपको मेरे पास आने के लिए और मुझसे शादी के लिए अपना आबाई मजहब है उसे तर्क करना पड़ेगा। जिना उस वक्त लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन थे और वो बम्बई के मुसलमानों की एक सीट पर थे और शायद उस जमाने में सिविल मैरिज के सिलसिले में ये होता था तो उस वक्त ये जाहिर करना पड़ता था कि हमारा किसी मजहब पर बिलीव नहीं है और हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। तो जिन्हा इस सूरत हाल से वाकिफ थे इसलिए उन्होंने कहा रति से कि जब तक तुम इस्लाम नहीं कबूल करोगे उस वक्त तक शादी नहीं हो सकती। फिर रति आई और रति को आगे जिन्हा ने पहले बम्बई की जामा मस्जिद के पेशवाम थे मौलाना नजीर अहमद खजंदी उनके हाथ से उसने इस्लाम कबूल किया और फिर अगले दिन जिना के घर में ही रति जो है वो जिना के निकाह में दाखिल हो गए।
1918 के उस बसंत में जिना और रति के दमकते हुए चेहरों को देखकर लगता कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। रति अपने लंबे बालों में हमेशा ताजे फूल सजाती, वो सुर्ख और हल्के नीले या गुलाबी रंग की पारदर्शी पोशाक पहनती, जब वो चांदी और संगमरमर के लंबे सिगरेट होल्डरों में दबी अंग्रेजी सिगरेटों का धुआं उड़ाती तो उनकी शख्सियत में चार चांद लग जाते, जिन्हा के एक और जीवनीकार प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद बताते हैं।
दोनों में फर्क बहुत था, उनमें बेनहोमी थी, ये जाते हुए अपनी गाड़ी रोक कर भुट्टा खरीदती थी और वो खाती हुई जाती थी। जिन्हा को ये चीजें पसंद नहीं थी, जिन्होंने सब बर्दाश्त किया। शी वॉज एक्चुअली ए रेबल इन द सेंस, रति जिन्हा वॉज क्रीम डीला क्रीम बॉम्बे की, और लोगों को सब पारसी कम्युनिटी को यही दुख था कि उनकी क्रीम डेला क्रीम एक मुसलमान से शादी की और वो कन्वर्ट भी हो गई। वो पारसी गवर्नस पहनती थी जो लो निकलाइंस होते थे। कहा ये जाता है कि वो बाथटब में पानी भरकर वहाँ ऊपर बैठकर खुद अपनी शक्ल को देखती रहती थी।
कई मामलों पर बंबई के गवर्नर लॉर्ड विलिंगटन से जिना का टकराव हुआ। एक बार लॉर्ड विलिंगटन ने जिना और रति को रात के खाने पर आमंत्रित किया।
रति जो थी वो अपने जमाने की निहायत फैशनेबल खातून थी, उनको फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहा जाता था कि इतनी हसीन तरीन औरत थी वो। तो बहुत लो नेक था जिसको वो पहन के उस दावत में गई थी, तो उस पर लेडी विलिंगटन ने ये बात कही थी कि अपने एडीसी से के जाके मेरी शॉल ला दो, शायद रति सर्दी महसूस कर रही होंगी क्योंकि लॉन में एक दावत हो रही थी। तो उस पे जिना जो थे वो नाराज हो गए, उन्होंने कहा जब रति को सर्दी महसूस होगी तो ये खुद आपसे शाल मांग लेंगे, और ये कह के जिना एहतजाजन उस दावत से वॉकआउट कर गए।
इसी तरह की घटना शिमला में हुई थी जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड को रति का भारतीय अंदाज में नमस्कार कहना रास नहीं आया था।
वहाँ पर जब वो वाइसरॉय आते हैं तो फिर सब लोग खड़े होके उसको कर्टसी करते थे। पहले तो कुछ लोग कहते हैं वो उठती भी नहीं, वो बोलती थी हम लेडी है हम क्यों उठना है। फिर जब उठती थी वो नमस्कार करती थी, वो कर्टसी नहीं करती थी। तो जब ऐसे हुआ वो एडीसी उसको बुलाया और बोला कि वाइसरॉय वांट्स टू टॉक टू यू, तो वो गई और उसने बहुत पॉम्पसली उनसे कहा, मिसेस जिन्ना यू नो दैट योर हस्बैंड हैज़ अ वेरी बिग फ्यूचर अहेड ऑफ हिम, सो व्हेन यू आर इन रोम यू शुड बिहेव एज रोमन्स डू। तो उसने उसको देख के बोला आई एम डूइंग एग्जैक्टली दैट इन इंडिया, आई डिड अ नमस्कार टू यू।
रति की अल्हड़ अदाओं ने कई बार जिन्ना को राजनीतिक परेशानियों में भी डाला। जिन्ना के असिस्टेंट रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम चागला ने अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में रति और जिना से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प संस्मरण लिखा है।
एक बार रति जिना की शानदार लंबी गाड़ी में टाउन हॉल पहुंची। जब वो कार से बाहर उतरी तो उनके हाथ में एक टिफिन बास्केट थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने कहा जे, वो जिना को इसी नाम से बुलाती थी, अंदाजा लगाओ मैं तुम्हारे लिए लंच में क्या लाई हूं। जिना का जवाब था भला मैं कैसे बता सकता हूं। इस पर रति बोली मैं तुम्हारे लिए वही पसंदीदा हैम सैंडविच लाई हूं। ये सुनते ही जिन्ना परेशान हो गए, बोले माय गॉड ये तुमने क्या किया, क्या मुझे चुनाव में तुम हरवाना चाहती हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अलग मुसलमान वोटरों वाली सीट से चुनाव लड़ रहा हूं। अगर मेरे वोटरों को पता चल गया कि मैं लंच में सुअर के मांस की सैंडविच खा रहा हूं तो फिर मेरे जीतने की क्या उम्मीद रह जाएगी। ये सुनते ही रति का चेहरा उतर गया, उन्होंने फटाफट टिफिन वापस उठाया और तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए कार से वापस चली गईं।
45 के होते होते जिना भारत के नामी बैरिस्टर बन चुके थे। उनके पास अपनी जवान बीबी के नखरों के लिए कोई वक्त नहीं था। चागला लिखते हैं,
रति ने जिना से उनकी शख्सियत के ग्लैमर की वजह से शादी की थी। दोनों का मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा था। जिना हर रोज अपने मुकदमों के लिए तैयारी करते। मुझे याद है हमारी मंत्रणा चल रही होती और रति कुछ ज्यादा ही बनठन कर आती और जिना की मेज पर अपनी टांगे लटकाकर उन्हें हिलाने लगती कि कब जिना अपनी बात खत्म करें और वो उनके साथ घर जाने के लिए निकलें। जिना के मुंह से नाराजगी का एक लफ्ज भी नहीं निकलता। वो अपना काम इस तरह कर रहे होते जैसे रति वहां मौजूद ही न हो।
1926 आते आते जिना और रति के बीच दूरियां बढ़ने लगी। उनके बीच उम्र का फासला तो था ही, जिना के बदलते राजनीतिक दृष्टिकोण ने भी उनको दूर करने में बड़ी भूमिका निभाई।
26 में जब जिना ने कांग्रेस के रवैये को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर लिया और उन्होंने ये देख लिया कांग्रेस जो है किसी सूरत से भी مسلمانوں کے جو حقوق ہیں اور جو مسلمانوں کے مطالبات ہیں ان کو ایکسپٹ کرنے پہ تیار نہیں ہیں, تو لازمیاں سے جنہ کا جھکاؤ تمام مسلمانوں کی سیاست کی طرف ہو گیا, اور یہی وہ مرحلہ ہے جہاں سے رتی جو تھی انہیں یہ یقین ہو گیا کہ جنہ جو ہے وہ کمیونل پالیٹکس کی طرف نکل گئے. تو یہی یہاں سے جنہ کا اور رتی کا اختلاف ہوا. پھر یہ کہ رتی بیمار بھی رہنے لگی تھیں, کچھ ہالوسینیشنز کا شکار ہو گئی تھیں وہ کچھ, تو اس کی وجہ سے وہ 1927 میں ہی اتنی بیمار ہو گئی تھیں کہ انہیں 1928 میں پھر فرانس جا کر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہو گئی تھی. یہ اختلاف جو تھا یہ عمروں کا تفاوت تو اپنی جگہ پر تھا, لیکن شاید ایک سیاسی اختلاف بھی ڈیولپ ہو گیا تھا دونوں کے درمیان.
20 فروری 1929 کو ماتر 29 سال کی عمر میں رتی جنہ کا ندھن ہو گیا. ان کے آخری دنوں میں ان کے پرانے دوست کانجی دوارکا داس ان کے ساتھ تھے.
کانجی کہتا ہے شی واز ویری ڈپریسڈ, اور ایک دن جب وہ بہت پین میں تھی, بہت ڈپریشن میں تھی, وہ جینا نہیں چاہتی تھی, تو کنجی واز ٹرائنگ ویری ڈیسپریٹلی ٹو کیپ ہر اسپرٹس اپ. ہی لیفٹ ہر فار اے فیو آورس تھنکنگ دیٹ ہی ول کم بیک اینڈ چیک آن ہر. وین ہی سیڈ آئی ول سی یو لیٹر شی سیڈ اف آئی ایم اسٹل الائیو. اسی رات کو اس کا ڈیتھ ہو گیا. مچ لیٹر ان این انٹرویو سم پاکستانی رائٹر ہیڈ کم ٹو بامبے اینڈ ٹیکن ان انٹرویو وتھ کنجی لانگ آفٹر جنا ڈائڈ, لانگ آفٹر رتی ڈائڈ, وین ہی سیڈ دیٹ شی ہیڈ کمیٹڈ سوئسائڈ بائی ٹیکنگ سلیپنگ پلز.
رتی کی طبیعت خراب ہونے کی خبر جنا کے پاس تب پہنچی جب وہ دلی میں ویسٹرن کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پاس ممبئی سے ایک ٹرنک کال آیا. لائن پر ان کے سسر دنشا پیٹٹ تھے. پچھلے 10 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی تھی. جنا فوراً ہی ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے تھے.
جب وہ ٹرین میں بیٹھے تو پھر ان کو وائس رائے کا اور باقی لوگ کا کنڈولنسز ٹیلیگرامس آنا شروع کیا, تو ان کو معلوم تھا جب تک وہ بامبے پہنچے کہ وہ ابھی نہیں رہی. سب لوگ ان کے لیے ویٹ کر رہے تھے. جنا جسٹ ڈروو اسٹریٹ فرام دا اسٹیشن ٹو دا سیمیٹری. ایز ہر ہسبینڈ ہی ہیڈ ٹو بی دا فسٹ ٹو تھرو دا ارتھ آن ہر باڈی. سو وین ہی کیم اینڈ ہی تھرو دیٹ کلاڈ سم تھنگ بروک ود ان ہیم اینڈ ہی کڈنٹ کنٹرول ہمسیلف اینی مور اینڈ ہی بروک ڈاؤن اینڈ ہی کرائڈ, بٹ ہی ریکورڈ ویری فاسٹ اینڈ ٹولڈ ہز گڈ فرینڈ کنجی دوارکا داس کین یو کم ہوم. اینڈ کنجی تھاٹ دیٹ مے بی ہی وانٹڈ ٹو نو واٹ ہیپن ٹو رتی ان دا ٹائم وین ہی واز ان ڈیلی, بیکاز کنجی واز دا اونلی ون ہو سا رتی. جب وہ گھر گئے تو وہ فوٹ فوٹ کے رونے لگے, کہ اتنا روئے کہ کنجی کہتا ہے کہ اس کو لگا کہ وہ ایک گریف نہیں ہے مگر ایک ایز اف سم گریٹ ڈیمیج ہیز بین ڈن ٹو ہم, اور اس کے بعد وہ بہت چینج ہو گیا.
یہ نہ تھی ہماری قسمت کہ وصال یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے, یہی انتظار ہوتا اگر اور جیتے.
ریحان فضل, بی بی سی, دلی.
پاکستان کے سنستھاپک محمد علی جنہ کے اس وواہ کی کہانی جس نے بھارت کو ہلا دیا. اور یہاں پر ہم اپنے سبھی شروتاؤں کو بتا دیں کہ کل بی بی سی انڈیا بول کارکرم نہیں ہوگا, بلکہ اس کے لیے چناؤں کے نتیجوں پر آدھارت ہمارا ایک وشیش کارکرم کل پرسارت کیا جائے گا, جسے سننا آپ قطعی مت بھولیے گا. کارکرم میں اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ودا لیں, مکھیہ سماچار ایک بار پھر سے سنتے ہیں.
بی بی سی سماچار. ہریانہ کی ایک عدالت نے سال 2012 کے ماروتی کے مانیسر استھت پلانٹ میں ہوئی ہنسا کے معاملے میں 31 لوگوں کو دوشی ٹھہرایا ہے. اس معاملے میں سزا کا اعلان 17 مارچ کو ہوگا. دکشن کوریا کی راشٹرپتی پارک گن ہے کو ہٹانے کے عدالت کے فیصلے کے بعد راجدھانی سیول میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے. ان میں سے کچھ نے انہیں گرفتار کرنے کی مانگ کی. جاپان نے کہا کہ وہ مئی کے آخر تک سنیکت راشٹر کے دکشنی سوڈان میں جاری شانتی مشن سے الگ ہو جائے گا. بی بی سی سماچار.
तो बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।